ओम शांति। वतन में बैठकर बाबा जब मधुबन की इस पवित्र धरा पर चमकती हुई मणियों के समूह को देखता होगा तो कितना खुश होता होगा। इधर ये चमकती मणियां वाह मेरा बाबा वाह बोलती, तो उधर बाबा वाह मेरे बच्चे वाह कहता। बाबा लगातार अपनी पावरफुल दृष्टि से मधुबन की मणियों को और चमकदार बनाकर इस योग्य बनाता है कि चाहे रामायण का सार सुनना हो, चाहे महाभारत की व्याख्या हो, उसे उतनी ही सुरुचिपूर्ण बनाने योग्य ज्ञान वीणा तैयार करता है। ऐसी ज्ञान वीणा धारिणी ज्ञान सूर्य की उषा काल की लालिमा लिए उषा काल की मधुर रश्मि समान आदरणीय उषा दीदी जी हम सबके समक्ष हैं, जिनका हम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी जी का जन्म जिम्बाब्वे में हुआ। 12 साल की उम्र में भगवान का परिचय प्राप्त हुआ। 1976 में आपका परिवार गुजरात आया। सन 1980 में 20 वर्ष की आयु में आपने अपना जीवन भगवान के निमित्त न्योछावर किया। तब से आज तक आप बाबा के हर बोल को जीवन में धारण कर धारणा मूर्त बन गई हैं। आप वर्तमान में पॉलिटिशियन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। अथक सेवा हेतु चल पड़े हैं, अथक सेवा हेतु चल पड़े हैं, निश्चित लक्ष्य लिए। पथ के कंटक क्या कंकड़, पथ के कंटक क्या कंकड़, बाबा ने खुद ही साफ किए। आज हम सुनेंगे उषा दीदी से निश्चय के आधार पर निश्चिंत जीवन। आदरणीय उषा दीदी जी,
ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हमारे सामने गीत बज रहा था कि जब साथी सृजनहार हो तो हमें काहे की चिंता है। और आज का टॉपिक भी यही है कि निश्चय से निश्चिंत स्थिति। कल की बाबा की मधुर मुरली को अगर देखें तो कल बाबा के मुरली के भाव में भी सूक्ष्म में कहीं यही भाव समाया हुआ था कि संतुष्ट मणि बनना, जो बड़े से बड़ी हलचल हो, वायुमंडल हो, उसको भी परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। और संतुष्टता की स्थिति में हम तभी रह सकते हैं जब अंदर में निश्चय बहुत पक्का हो। कहने में तो हर एक ब्राह्मण ये कह देता है कि हाँ हम निश्चय बुद्धि है, और निश्चय के प्रकार को भी हम जानते हैं कि वे स्वयं में निश्चय हो, परिवार में निश्चय हो, शिव बाबा में निश्चय हो और ड्रामा में निश्चय हो। ये चारों प्रकार के निश्चय को भी हम जानते हैं, उसकी परिभाषा को भी हम जानते हैं। और इसीलिए हर ब्राह्मण निश्चय के आधार पर ही ब्राह्मण बनता है। आज भी बाबा में निश्चय है तभी हम है यहां पर। स्वयं की शक्ति में भी निश्चय है तभी हम है यहां पर, यही कहेंगे। चलते चलते जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आती है तो ड्रामा में निश्चय है, तभी उन उतार चढ़ावों को भी हमने पार किया है। जिनको निश्चय नहीं है वो तो वापस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो निश्चय है इसीलिए यहां है, परंतु कभी कभी कोई कोई ड्रामा की सीन ऐसी आती है और उस वक्त जब देखते हैं तब लगता है कि कहीं न कहीं निश्चय की कमी है। पिछले 2 सालों से जब बाबा अचानक और एवर रेडी बनने के लिए इशारा दे रहे थे, अक्सर अचानक शब्द सुनते ही हर एक ब्राह्मण के मन में, हमारे मन में भी यही आता था और हर ब्राह्मण के मन में भी यही आता था कि अचानक माना ही बाहर की दुनिया में कोई प्रकार की हलचल होगी और उसके लिए बाबा हमें कह रहा है कि अचानक और एवर रेडी बनना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये भी बाबा के मुरली के शब्द थे और उसके लिए शायद हम सभी ने प्रिपरेशन की थी अपनी कि कभी भी अगर कुछ भी हो जाए तो शायद हम तैयार है उसके लिए। परंतु किसी ने भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबा के सीजन के पहले 2 टर्न या ये ड्रामा सीन हमारे सामने ले आएगी कि जब दादी को थोड़ी सी चोट लगी और रथ स्वस्थ नहीं रहा तो 2 टर्न मिस किया। उस समय जब साक्षी होकर के हम देख रहे थे, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये अचानक का पेपर, पहला पेपर ब्राह्मणों के लिए ही होगा, कि सचमुच ब्राह्मणों की अवस्था इसमें कितनी निश्चिंत वाली रही, यह बिना किसी हलचल के अडोल अचल रही। तो हमने जब देखा साक्षी होकर के कि कई विदेशी भाई बहनों को जैसे ही समाचार मिला, परंतु दादी जी ने जैसे ही लेटर भेजा कि कोई भी अपनी टिकट कैंसिल नहीं करेगा और सारे डबल विदेशी उस पहले टर्न में आ गए। 3,000 भाई बहने उस समय यहां पहुंच गए। बहुत मुश्किल से कहीं किसी ने कैंसिल कराई होगी, बाकी लगभग कहीं पहली बार वाले भी आ गए। बड़ा अच्छा लगा कि बाबा जब भी कहते हैं डबल विदेशियों से बाबा बहुत खुश है, या डबल तीव्र पुरुषार्थी जो बाबा ने टाइटल दिया कि सचमुच आज्ञाकारी बन करके उन्होंने कैसे आज्ञा को पालन करके मधुबन में पहुंच गए। और उस समय जो योग भट्टी उन्होंने किया, जब बाबा के आने का दिन था, उस दिन का जो वातावरण था यहां का, इतना पावरफुल वातावरण था कि उसके बाद जब मैंने कई लोगों से पूछ करके जानना चाहा कि उन्होंने क्या अनुभव किया उस समय, 4 घंटा जो योग चला 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक कांस्टेंट एक भट्टी रही और इस तरह का वातावरण बन गया था कि लगा कि सचमुच कितना पावरफुल, सुई गिरने तक का भी आवाज आता, इतना पावरफुल वातावरण था। जब हमने कईयों से पूछा तो कई पहली बार आने वाली आत्माओं ने भी यही सुनाया, हमें लगा नहीं कि बाबा नहीं आया, क्योंकि ऐसा अनुभव हमने किया यहां बैठे बैठे। और बाबा ने हमेशा ये बात कही है कि जिसके बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो बाबा के टचिंग्स को कैच करेंगे और यहां बैठे बैठे भी वो अनुभव करेंगे। और वही स्थिति थी कि यहां बैठे बैठे भी उन्होंने वो अनुभव किए, बहुत सुंदर अनुभव, कईयों के सुनने जैसे थे, कईयों को साक्षात्कार हुए, कई यहां बैठे बैठे वतन में पहुंच गए और बाबा के साथ का अनुभव किया। माना बहुत सुंदर अनुभव रहा और इसीलिए उन्हें महसूस ता नहीं हुई कि बाबा नहीं आए। किसी को कोई प्रश्न नहीं था कि ड्रामा में ये सीन क्यों, लेकिन वो सीन को भी स्वीकार कर लिया उन्होंने और सब बहुत भरपूर अपने आप को महसूस करते हुए यहां से गए। परंतु उसके बाद जो दूसरा टर्न था भारतवासियों का, तो भारतवासियों का जो पहला टर्न होता है बाबा का, हमेशा वो 25,000 तक जाता है। परंतु उस समय देखा गया कि सिर्फ 6,000-7,000 तक पहुंचे ब्राह्मण, बाकी सबने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। वो नजारा जब देखा भारतवासियों का तो मन में विचार आया कि क्या इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्या ये निश्चय बुद्धि है, क्या यही निश्चिंत अवस्था है जो अपने घरों में बैठ गए निश्चिंत होकर के। मन में ये सवाल जरूर आया कि विदेशियों ने कोई सवाल नहीं किए और अनुभव किए, लेकिन जो 18-19,000 लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल करवाई या नहीं पहुंचे पहले टर्न में, तो भारतवासी बच्चों का रिकॉर्ड क्या कहेंगे। तब महसूस हुआ बाबा विदेशियों को इतना प्यार क्यों करता है। कहीं ना कहीं हम टेकन फॉर ग्रांटेड के यही है ना, वो दुनिया के दूसरे छोर से आ रहे थे जहां की टिकट इतनी महंगी, 1,00,000 से ऊपर की टिकट होती है, तो भी उनके मन में संकल्प नहीं आया कि लास्ट टर्न में चले जाएंगे या बाद के टर्न में चले जाएंगे, और पहुंच गए। और भारत के ही रहने वाले के मन में ये विचार आ जाए और टिकट कैंसिल कर दे तो इसको क्या कहेंगे। इसीलिए आज का विषय के बारे में जब मैं सोच रही थी तो मेरे मन में यही बात आ रही थी बार बार, कैसा क्यों हुआ। जो भारतवासियों के संस्कारों में, इतने डीप संस्कारों में ईश्वर के प्रति आस्था जो है, कि चाहे कुछ भी हो जाए भक्ति में भी उस आस्था को नहीं छोड़ा, आस्था कहो, विश्वास कहो, निश्चय कहो ब्राह्मणों की लैंग्वेज में, तो ब्राह्मण बनने के बाद ऐसी स्थिति क्यों हुई। क्या कहीं हमें अपने आप को करेक्शन में लाने की जरूरत तो नहीं है, या अपने निश्चय के फाउंडेशन को देखने की आवश्यकता तो नहीं है कि बाबा नहीं आ रहा है इसलिए कौन जाएगा मधुबन, छोड़ो घर में ही निश्चिंत होकर के बैठ जाओ। बाबा ने ये अचानक का जो पेपर लिया उसमें ये 18-19 हजार को पास कहेंगे या फेल कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, फेल कहेंगे ना, कहीं आप तो उसमें नहीं थे, कोई टिकट कैंसिल कराने वाले तो नहीं थे आप में से कोई। भावार्थ ये कि बाबा जब कोई ना कोई एक ड्रामा में अगर कोई सीन ऐसी होती है और वो सीन ने अगर कोई एक दरवाजा बंद किया भी हो, पेपर लिया भी हो, तो दूसरी ओर सृजनहार ऐसा है कि उसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई विधि है जिस विधि से वो अनुभव न कराएं, ये हो नहीं सकता है। और इसीलिए जो 6-7 हजार लोग पहुंचे थे यहां पर, उनसे भी मैंने पूछा, कई लोग मिलने आते थे तो मैं पूछती थी उनसे भी कि आपका अनुभव क्या रहा। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हमें महसूस नहीं हुआ कि बाबा नहीं आया, हमें यही लगा बाबा आया और हमने अनुभव किया। जो पहली बार आने वाले थे उन्होंने भी अनुभव किया। तो जो 17-18 हजार ने टिकट कैंसिल कराई वो उस अनुभव से तो वंचित रहे या नहीं रहे। इसीलिए ये अचानक का पेपर सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए था, बाहर की दुनिया का हलचल का पेपर नहीं था। यह ब्राह्मणों के लिए इसलिए था क्योंकि आने वाले समय में जो बातें हैं, जो हलचल होने वाली है, अगर इस वक्त ही हम फेल हो गए तो उन पेपरों को पास करने की समर्थ ही कहां है। भावार्थ ये कि कहीं ना कहीं हमारे निश्चय का फाउंडेशन बहुत कमजोर है, इसलिए फेल हुए वो 17-18 हजार, नहीं तो फेल नहीं होते थे। तो निश्चय माना क्या, किसको निश्चय कहे? कल बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे संपूर्णता का सहज साधन है फॉलो ब्रह्मा बाप, या माता पिता को फॉलो करना, बस कदम पर कदम रखते हुए चलना। और इसीलिए आप सभी को मम्मा की वो बातें दादियों ने कई बार या वरिष्ठ भाई बहनों ने कई बार अपने अनुभव में सुनाई है, कई बार आपने सुनी भी होगी, बड़ी दादियों से, बड़ी बहनों से, भाइयों से सुनी होंगी। ये बात जो मुझे याद आ रही थी कि एक बार एक पार्टी आई थी बाबा से मिलने के लिए, और जब पार्टी विदाई ले रही थी तो उस वक्त पार्टी निकल रही है, विदाई ले रही है, और बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा बाबा को संकल्प है कि इस पार्टी को हलवा बनाकर खिलाया जाए। आप सबको वो दृष्टांत या वो इंसिडेंट याद होगा जब बाबा ने मम्मा से कहा कि बाबा की इच्छा है कि इन बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाया जाए, और मम्मा बहुत शांत चित होकर के, जैसे बाबा ने कल कहा, संतुष्टता की स्थिति में उठ करके गए और बहुत प्यार से हलवा बनाने लगे। पार्टी निकल गई, बस स्टैंड पहुंच गई, मम्मा फिर भी बनाती रही। जब किसी बहन ने आकर के मम्मा से कहा, पार्टी चली गई है, अब तो आप नहीं बनाओ ना, बनाने की जरूरत नहीं है, मम्मा ने कुछ नहीं कहा और फिर भी प्यार से बनाती रही। और जैसे ही हलवा बन करके तैयार हुआ, पार्टी बस में चढ़ गई और यहां बाबा को ला करके जब दिया पैक करके, बाबा ने एक भाई को साइकिल पर कहा ये हलवा देकर के आओ बच्चों को। बस में बैठे हैं, बस निकलने की तैयारी पर है और वो भाई ने जाकर के हलवा दे दिया। उस समय किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपको कोई संकल्प नहीं चला कि पार्टी निकल गई या पार्टी निकलने की तैयारी पर है और ऐसे समय में बाबा आपको डायरेक्शन दे रहे हैं हलवा बनाने के लिए, तो आपने क्यों नहीं कहा कि इतनी जल्दी तो हलवा बनेगा नहीं, आपको तो पता था हलवा बनने में कितना टाइम लगता है। और उस वक्त दादियां हमेशा अपने अनुभव में बताती है कि मम्मा ने कहा कि डायरेक्शन देने वाला क्या खुद नहीं जानता था कि जो उसने डायरेक्शन दिया मुझे, इसको कहते निश्चय बुद्धि। ये निश्चय बुद्धि की स्थिति कितनी संतुष्टता वाली स्थिति कि किसने डायरेक्शन दिया क्या वो खुद नहीं जानता था कि टाइम हो गया है बस का और जाना है, इतनी जल्दी हलवा नहीं बन सकता है, क्या उनको मालूम नहीं था। वो निश्चय बुद्धि की जो स्थिति है मम्मा की। फिर जब किसी ने मम्मा से कहा कि मम्मा लेकिन अगर मान लो कि ये तो मिल गया उनको, लेकिन अगर नहीं मिलता था तो वेस्ट जाता था ना, तो जो गीत बना के बजा करण करावन हर बाबा जब कराने वाला है तो हमें काहे की चिंता है ना। माना भावार्थ ये कि अगर बाबा ने डायरेक्शन दिया और बस का टाइम हो भी गया होगा तो बस लेट हो जाएगी, ये भी निश्चय था, ये निश्चय की स्थिति है। और इसलिए उनकी हलचल नहीं थी मन की कोई भी रूप से कि जब देने वाले ने डायरेक्शन दिया तो पहली बात उसको पता नहीं था जो मैं उसको क्वेश्चन करूं, और अगर उसने कहा ही है और बस का टाइम हो गया है तो वो बस लेट हो जाएगी, ये भी एक विश्वास कि वो होनी बदल जाएगी, क्योंकि देने वाला कौन था, कराने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, कोई साधारण व्यक्ति मुझे नहीं कह रहा है। इतना विश्वास आज हम लोगों को, मैं कई बार ये इंसिडेंट जब सुनती हूं तो मन में आता है कि आज हम लोगों को कोई अगर 11th आवर पर हलवा बनाने के लिए कहे तो हम शायद 10 सवाल करेंगे कि बाबा लेकिन टाइम हो गया है, उनको मिलेगा नहीं, बस निकल जाएंगी, कितने बातें हम शायद सुना भी देवे। और तभी याद आता है कि जब बाबा कोई भी डायरेक्शन देता है मुरली के अंदर, तो मुरली में जो बाबा का डायरेक्शन आता है तो भी कई बच्चे योग में बाबा को एडवाइस करना शुरू करते हैं, और वो एडवाइस किस तरह से करते हैं, चाहे कोई ना कोई बहाना बना करके करते हैं कि बाबा आपको क्या मालूम ये दुनिया की परिस्थितियां क्या होती है, हमारे सामने कौन से पेपर आते हैं, आप तो डायरेक्शन दे देते हैं लेकिन हम करने जाते हैं तो हमारे सामने तो मुसीबतें खड़ी हो जाती है। लेकिन वो मुसीबत शायद इसीलिए खड़ी होती है क्योंकि युक्ति युक्त होकर के हमने उस डायरेक्शन को अमल में नहीं लाया है, कहीं न कहीं उसको प्रैक्टिकल लाने में हमारी कमी कमजोरी है, इसीलिए वो डायरेक्शन से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो उस अनुसार नहीं हो सकती है। नहीं तो जैसे कहा बाबा का वरदान है, कल भी जब बाबा वरदान दे रहे थे कि बच्चे इस बात को सहज करने के लिए बाबा अमृत वेले को वरदान देता है, विधि भी बाबा ने बता दी कि बाबा सहयोग शक्ति और स्नेह का वरदान दे देगा अमृत वेले, और उसके बाद कोई भी बात असंभव हो नहीं सकती है। तो जहां बाबा हर बात को इतना सरल करता जा रहा है हमारे लिए, ताकि कोई बच्चों को पुरुषार्थ में जैसे मेहनत न लगे, इतना सरल कर देता है बाबा। उसके बाद भी अगर हम कोई बहाना बनाए कि बाबा ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं हुआ, इसलिए ये सेवा नहीं हुई, या इसीलिए अमृत वेला उठ नहीं सके, तो ये बहाना देना, क्या इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? क्या ये निश्चय बुद्धि की परिभाषा हो सकती है? क्योंकि जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उसके सामने कोई बहाना हो ही नहीं सकता है कि ये परिस्थिति आई, वो परिस्थिति आई, ये सीन आई, ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, वो व्यक्ति के, उसके सामने कोई भी बहाना कोई भी रूप में नहीं हो सकता है। और इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, बाबा जब बच्चों के बहाने को सुनता है तो बाबा को भी हंसी आते हैं, किसको सुना रहे हैं? और क्या इसी को निश्चय बुद्धि कहते हैं? क्या यही भगवान के ऊपर हमें निश्चय है? तो निश्चय माना जहां कोई भी संकल्प न हो, फुल स्टॉप। निश्चय माना जो आज्ञा मिली, चाहे मुरली द्वारा आज्ञा मिली, उसी समय बिना कोई सवाल किए उसको फॉलो करना, एक्यूरेट समझते हुए उसको फॉलो करना। तो अगर उसमें कोई गलती भी हो जाएगी तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा ने कहा है, अगर ब्रह्मा बाप ने भी कोई डायरेक्शन दिया होगा, माना निमित्त रथ ने भी कोई डायरेक्शन अगर दिया होगा और वो अगर कुछ उल्टा होने वाला होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको सुलटा कर देगा। इतनी जब गारंटी बाबा हमारी लेता है, उसके बाद भी अगर हम बहानेबाजी करें, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि एक बाजी बच्चों को बहुत अच्छी खेलनी आती है और वो है बहानेबाजी। हम जानते भी है, तो ये बहानेबाजी जिस दिन हम छोड़ देंगे, कोई प्रकार से बहाना नहीं देंगे, उस दिन कहेंगे 100% निश्चय बुद्धि, निश्चिंत कि उसके ऊपर भगवान का वरदानी हाथ ऐसा होगा कि उसको कोई माया की ताकत नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसको कभी किसी भी रूप से हिला सके। जब शास्त्रों में भी इस बात का गायन है कि अंगद का पैर रावण हिला नहीं सका, रावण जैसा रावण तो क्या, बाबा ने एक बार कहा था, रावण जैसा रावण तो क्या रावण का बाप भी आ जाए तो भी वो अपने पैर को हिला नहीं सकता है। इतनी अंदर में शक्ति आ जाती है। भगवान के वरदान को, यानी भगवान के महावाक्य को पालन करने में इतनी हमारे अंदर शक्ति आ जाए और निश्चिंतता आ जाए कि उसमें कोई सवाल न हो, लेकिन जैसे कि कूद पड़ना, और कूद पड़ करके बाबा बचाने वाला है। अनुभव है, कई बार कई बहनों का, भाइयों का, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का ये अनुभव है कि बाबा के डायरेक्शन मिलते ही जैसे ही एक जैसे कूद पड़े उसमें, तो परिस्थिति कितनी भी विकराल क्यों न हो, लगा कि जैसे किसी ने धक्का मार दिया हो और खाई में गिरने वाले हो, लेकिन उसी समय बाबा ऐसे पंख दे देता है, वो खाई में गिरना तो क्या, लेकिन उड़ने का अनुभव करके पार हो जाता है। ये है निश्चय बुद्धि की स्थिति। दूसरी बात मुझे याद आती है कि जब बाबा ने कहा फॉलो ब्रह्मा बाप, कि ब्रह्मा बाबा के सामने भी पेपर आए हैं, निश्चय के पेपर तो आए हैं। हम बच्चे तो चलो ये पहला निश्चय के पेपर में ऐसे फेल हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने भी निश्चय का पेपर तो आया था कि जब बेगरी पार्ट चला था। और उस समय हम जानते हैं कि जब ब्रिजेंद्र दादी बाबा के सामने जाकर कहती थी, बाबा चार आना भी नहीं है आज घर के अंदर, अनाज का दाना भी नहीं है और 350 को खिलाना है, आपके घर के अंदर अगर ये परिस्थिति आए कभी कि मानो चार आना भी न हो और एक अनाज का दाना भी न हो तो कितना व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाए। चार लोगों को खिलाना हो तो भी कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं आप जानते हैं, जबकि आप दुनिया के अंदर रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन कमाने के बावजूद भी अगर किसी महीने में कमाई अगर ठीक नहीं हुई हो तो भी आपको एक चिंता लग जाती है। अब बाबा के सामने 350 लोग हो और अनाज का दाना न हो और चार आना भी न हो, लेकिन फिर भी बाबा के चेहरे पर कभी कोई प्रकार की चिंता की रेखा नहीं देखने को मिली। बाबा कहता था कि बच्ची 10 बजे आ जाना। ब्रजेंद्र दादी कभी कभी मूंझ जाती थी कि अभी नहीं है तो 10 बजे कहां से निकालेगा बाबा, है ना? और वो 10 में 5 मिनट पहले पहुंच जाती थी बाबा के सामने। बाबा घड़ी देखकर कहता, अच्छा 5 में जल्दी आगे बैठ जाओ, है ना? और ठीक 10 बजे ये पोस्टमैन आता था मनी ऑर्डर लेके। 500 रुपया उसमें होते थे, कभी 1000 रुपया होते थे। बाबा उसी वक्त वो 500 रुपया दे देता था और कहता था, जाओ बाजरे का आटा खरीद के ले आओ, बाजरे का ढोडा और छाछ बना करके पी, सब खा लेंगे। भावार्थ ये मेरा कहने का इस वृत्तांत के पीछे भी कि बाबा की इतनी निश्चिंता वाली स्थिति कि बाबा को जब ये पूछते थे कि बाबा ये 500 रुपया 1000 रुपया कौन भेज रहा है, और वो भी कोई एक दो महीने का पार्ट नहीं था, कई सालों का पार्ट था। जब सालों का पार्ट हो और उसमें समय पर जब खत्म हो जाए और 500 रुपया 1000 रुपये का मनी ऑर्डर आ जाए, उस समय में सस्ताई थी तो वो 500 रुपया 1000 रुपया भी बहुत कुछ खरीदी और कुछ दिनों तक चलता था। लेकिन जब बाबा से पूछते थे, बाबा ये कौन भेज रहा है, तो बाबा हंस के मुस्कुराकर कहता था, है ना, रावण की नगरी में एक मंदोदरी जो छुपकर राम की मदद कर रही है। भावार्थ ये कि सोचो कि वो आत्मा जिसने मदद की वो 500 रुपया 1000 रुपया भेजने की, भगवान भी शायद उसका ऋणी हो गया होगा और कितने जन्मों तक उसको उस ऋण का फल मिला होगा, उस आत्मा का भाग्य कैसा होगा। भले कलयुगी अंतिम जन्म के अंदर उसको वो सौभाग्य नहीं मिला कि यहाँ साथ में रहना, लेकिन फिर भी मंदोदरी बन करके भी रावण की नगरी में रहते हुए भी छुप करके भगवान को मदद करने का जो सौभाग्य उसने लिया है, उसके लिए भगवान भी जैसे नतमस्तक हो जाता है ऐसी आत्माओं के प्रति। उस समय बाबा को किसी ने पूछा कि बाबा आपको संकल्प नहीं चलता था कि अगर नहीं आए ये मनी ऑर्डर नहीं आता था। देखो बच्चों की बुद्धि में कैसे सवाल आ जाते हैं, लेकिन बाबा के बुद्धि के अंदर ये सवाल कभी नहीं आया। इतना निश्चय बुद्धि, इतना निश्चय का पेपर बाबा के सामने भी आया, लेकिन बाबा कितना पक्का निश्चय बुद्धि कि बच्चे ने सवाल पूछा कि बाबा क्या कभी आपको संकल्प नहीं चला कि अगर ये 500 रुपया नहीं आते थे तो क्या करते थे आप? पता है बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, बच्चे ये बच्चे किसके हैं, मेरे थोड़ी है, मैं तो निमित्त उनका ध्यान रख रहा हूँ, उसकी जिम्मेवारी है, मेरे बच्चे थोड़ी है ये सब। ये बाबा के निश्चय का फाउंडेशन। दूसरा जवाब बाबा ने दिया कि बच्चे सबसे पहले भोग किसको लगता है, यज्ञ के अंदर सबसे पहला भोग किसको लगता है, दोपहर को शिव बाबा को लगता है ना। तो जिस दिन शिव बाबा भूखा रहेगा हम सब बच्चे भी भूखे रहेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। निश्चय का बोल देखो बाबा का, कि इतना विश्वास के सबसे पहला भोग उसको लगता है, जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं है उसको भोग लगाने के लिए, उस दिन हम सब भी भूखे रहने के लिए तैयार है। इतनी मानसिक तैयारी। और उसको कहा जाता है एवर रेडी स्थिति या निश्चय बुद्धि निश्चिंत अवस्था। भावार्थ ये कि जब भोग उसको लगता, और बाबा ने कहा कि भक्ति में भी ऐसा कभी नहीं होता था कि भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ न हो। दुनिया में कहा जाता है कि भगवान सुबह भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अगर ये विश्वास भक्तों का भक्ति में भी है तो हम तो फिर भी उसके बच्चे हैं। तो हमारा विश्वास, हमारा निश्चय कितना अड़िग होना चाहिए कि ऐसा कभी हमारे लिए दिन नहीं आ सकता है। और इसीलिए बाबा ने ये गारंटी ली है कि जो बच्चे बाबा को भोग स्वीकार करा के स्वीकार करेंगे तो अंतिम समय तक बाबा दाल रोटी देने के लिए भी बंधा हुआ है। लेकिन ये किसको बंधा हुआ है ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बाबा को भोग स्वीकार करा करके स्वीकार करता हो उसके लिए बाबा बंधा हुआ है। बाकी जो अगर स्वीकार कराता ही न हो और फिर अगर वो सोचे कि बाबा हमें भी अंतिम समय दाल रोटी दे, ये कभी हो नहीं सकता है, है ना। और इसीलिए ऐसा नहीं कि कल से लेकर हम भी बाबा को भोग स्वीकार कराना चालू कर दे ताकि अंतिम समय कम से कम दाल रोटी तो मिले। ऐसे मतलब से भोग नहीं लगाना, जितना प्यार से विश्वास से स्नेह से बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, निश्चय बुद्धि होकर के भोग स्वीकार कराते हैं, उसके लिए बाबा भी बंधा हुआ होता है। और इसीलिए जब भी भोग स्वीकार कराए, दादी जी मुझे याद आता है कि बड़ी दादी जी हमेशा, इसीलिए जब भी भट्टी होती थी तो हमेशा सबसे पूछते थे कि अपने घर में बाबा के लिए अलग बर्तन रखे हैं आपने, और अलग बर्तन रख करके बाबा को भोग स्वीकार कराते हो। और इसीलिए जब ये संस्कार दादी जी हम सबको देती थी कि हर एक ब्राह्मण बच्चा अपने घर में बाबा को प्यार से स्नेह से भोग जरूर स्वीकार कराए, दादी के भावना के पीछे यही भाव होता था कि हर एक ब्राह्मण के प्रति बाबा की जो गारंटी है वो गारंटी बाबा अंत तक, और हर ब्राह्मण उस गारंटी का अनुभव करे कि अंतिम समय तक बाबा उनको दाल रोटी खिलाने के लिए भी बंधा हुआ है। तो प्यार से स्नेह से भोग स्वीकार कराएंगे ना, सभी भोग स्वीकार कराएंगे माताएं, हर एक अपने घर में प्यार से बाबा को ऐसे भोग स्वीकार कराओ, इतना स्नेह से प्यार से स्वीकार कराएंगे तो बाबा भी क्यों नहीं बंधेगा। इसलिए कहा कि जब वो आत्मा जिसने 500 रुपया 1000 रुपया भेजे मनी ऑर्डर के रूप में, उसके लिए बाबा बंध गया, इतना बाबा उस आत्मा का जैसे कि ऋणी हो गया। तो भगवान तो हमेशा यही कहते हैं, भक्ति में भी यही कहा जाता कि भावनाओं का भूखा है। तो निश्चय बुद्धि की स्थिति के कोई भी प्रकार की परीक्षा आ जाए, चाहे ब्राह्मणों के बीच में आए, परिवार से आए, ड्रामा की कोई सीन परीक्षा के रूप में ले आए, लेकिन कोई भी परीक्षा या अचानक का खेल हमारी मानसिक स्थिति में न कोई सवाल पैदा करे, न कोई हलचल पैदा करे, ना ही कोई वायुमंडल को क्रिएट करे हम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। कई बार देखा जाता, बाबा ने भी ये बात को कहा कल की मुरली में कि कई सेंटर्स पर बाबा जब चक्कर लगाते हैं तो देखते हैं वहां सहन शक्ति की कमी है। और ये सहन शक्ति की कमी क्यों है, क्योंकि शायद ड्रामा में इतना निश्चय नहीं कि ड्रामा में जो हो रहा है हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण जरूर समाया हुआ है। जब ये निश्चय नहीं होता है तभी कई प्रकार के हंगामे शुरू कर देते हैं, सहन शक्ति की कमी हो जाती है, उस परिवार के सदस्य को स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है, सहन करने की शक्ति नहीं होती है, तो क्या उसको परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि कहेंगे, बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि कहेंगे? बाबा ने जब उसको भी चुना है, जब कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा बाबा का चुना हुआ रत्न है, वहां तक कि बाबा कई बार कह चुका है कि माला का लास्ट नंबर दाना यानी त्रेता युग के लास्ट नंबर मण का भी बाबा का चुना हुआ रतन है, तो क्या उस आत्मा के प्रति हंगामे करना या संशय उत्पन्न करना या उसके प्रति वायुमंडल क्रिएट करना, क्या उसको बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि कहेंगे? क्या ये हंगामे करना ये निश्चय बुद्धि की निशानी है? क्या हमें उस वक्त वो बाबा के महावाक्य भूल जाते हैं कि ये आत्मा भी बाबा का चुना हुआ रतन है, भले ये त्रेता युग का लास्ट नंबर मणका का दाना क्यों न हो, तो हम क्यों हंगामे करें? इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। निश्चय बुद्धि माना हर सीन को स्वीकार करना, जैसे प्रकृति के अचानक का खेल जब सीन के रूप में आता है उसको स्वीकार करना निश्चय बुद्धि माना जाता है। तो परिवार के अंदर कुछ अगर होता है तो उसके प्रति भी के कल्याण, इसमें भी कुछ न कुछ समाया हुआ है, बाबा कुछ सिखाना चाहता है, ड्रामा कुछ सिखाना चाहता है हमें, या हमारी शक्ति की परीक्षा हो रही, हमारे निश्चय की परीक्षा हो रही है उस सीन के द्वारा, तो उस समय हमारा मन की निश्चय की स्थिति हिलती क्यों है, उसको भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा माना, चाहे ड्रामा की कोई सीन हो उसके लिए भी हमारा एक्सेप्टेंस इतना हाई हो जाए, परिवार की कोई आत्मा हो उसके प्रति भी हमारा एक्सेप्टेंस स्वीकार करने की शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाए, और कोई भी ड्रामा का ऐसा खेल हो, स्वयं की शक्ति के अंदर भी कोई बात आ जाए, स्वयं के सामने कोई ऐसा पेपर आ जाए, तो स्वयं में भी निश्चय की शक्ति को इतना बढ़ा दे हम कि कोई भी बात हमें हिला नहीं सकती। बाबा का हर डायरेक्शन, सिर माथे हर डायरेक्शन को इतना महत्व देते हुए बिना किसी बहानेबाजी के हम उसको स्वीकार करें, उसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति। ठीक है ना? तो ये है निश्चय की परिभाषा कि कभी कोई भी बात हमारे मन की स्थिति को विचलित नहीं करे। और अब हम तैयार है कि ड्रामा किसी भी प्रकार का पेपर हमारे सामने ले तो भी हम तैयार है। बाबा ने इसीलिए कल की मुरली में बार बार कहा निर्विघ्न संतुष्टता वाली स्थिति, यानी आने वाले समय के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विघ्न क्रिएट करने वाली है, और जब बहुत सी ऐसी बातें हैं विघ्न क्रिएट करने वाली, इसीलिए बाबा हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि निर्विघ्न रहो, कुछ भी हो जाए तो भी निर्विघ्न रहना, और संतुष्टता की स्थिति तभी आएंगी जब निश्चय का फाउंडेशन हमारा बहुत मजबूत बहुत पक्का हो। तो आज ये नए साल पर हम सभी यही दृढ़ संकल्प करेंगे और मधुबन से भी जाएंगे कि कुछ भी हो जाए तो भी हमारे निश्चय का फाउंडेशन अभी हिलेगा नहीं, कोई भी पेपर ड्रामा ले, लेकिन हम उसके लिए एवर रेडी है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।